नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल तक ये प्रसंग हुआ कि पांडवों को दोबारा द्यूत क्रीड़ा में बुलाया गया। पांडव लोग सब जानते हुए भी दोबारा क्यों आए, इसका समाधान भी हो गया कि इसके बिना अब कुरुवंश का, इन दुष्टात्माओं का नाश होने वाला नहीं था। युधिष्ठिर जी महाराज ये जानते थे कि कपट से शकुनी हमको हराएगा, परंतु हार जाने के बाद भी शर्त कोई खराब नहीं थी कि वनवास में रहना पड़ेगा, ये खराब शर्त नहीं थी। पहले वाली बड़ी खराब शर्तें थी, 12 वर्ष तक वन में रहो, 13वें वर्ष में अज्ञातवास करो, उसके बाद अपना अपना राज्य अपनी अपनी जगह रहो। स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर जी ने भी देखा कि 12 वर्ष तक यदि हम वन में रहे तो 12 वर्ष में हम हमारा सब प्रकार का बल इकट्ठा कर लेंगे। धर्म बल सबसे बड़ा बल है, तपोवनों में धर्म बल प्राप्त होता है। अर्जुन आदि हैं ये तपस्या के द्वारा शस्त्र बल प्राप्त कर लेगा, और तपस्वी जीवन से हमारे जीवन में जो कुछ हमने गलतियां की हैं उनका सुधार भी हो जाएगा। बहुत लाभ देखा उन्होंने तब वो जुए में खेले। दोबारा जुए में खेले हैं, उसमें किसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज की कोई बुराई नहीं थी, बहुत पवित्र सोच थी। रवाना हो गए वनवास में, ब्राह्मण लोग साथ में थे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो मैं तपस्वी जीवन में हूं, आप लोगों के भोजन का कैसे प्रबंध करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा हम हमारा भोजन खुद कर लेंगे, आप चिंता मत करो। युधिष्ठिर जी तो धर्मात्मा थे, उन्होंने देखा ये कोई राजा का धर्म नहीं होता। तब उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की। ऐसा प्रसंग कल तक चला। सूर्य की उपासना उन्होंने पुरोहित धौम्य के कहने से की थी। अब बड़े आर्त भाव से सूर्य की ओर सन्मुख हो गए और सूर्य भगवान से कहने लगे कि हे सूर्य भगवान, आप सारे जगत के नेत्र हैं, प्रकाशक हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, जो लोगों को आप दर्शन देते हैं। आप मोक्ष के खुले दरवाजे हैं। आज तक आपकी बड़े बड़े ऋषियों ने पूजा की है, सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष गुह्यक पन्नग ये सब आपसे अपने अपने वरदान प्राप्त किए हुए हैं। विद्याधर योनि में रहने वाले प्राणी कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करते हैं। आपके प्रभाव से सभी प्राणियों को जीवन मिलता है। भगवान विष्णु जिस चक्र से सब दुष्टों का संहार करते हैं वह आप ही के अंश से बना हुआ है। आप ही अनेक प्रकार की ऋतुओं को पैदा करते हैं जिससे प्राणियों को अनेक प्रकार से जीने में सहायता मिलती है। आप ही वर्षा ऋतु हैं, आप ही ग्रीष्म ऋतु को प्रदान करते हैं, आप ही शरद ऋतु को प्रदान करते हैं। आपकी किरणों में यदि तपत नहीं होती तो सारे वातावरण में जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं वे कैसे मिटती। आप ही बदलों को बनाते हैं, बिजली के रूप में आप चमकते हैं, जाड़े से ठिठिरते हुए पुरुष को आप अग्नि से सांत्वना देते हैं। यदि आपका उदय नहीं होता तो सारा जगत अंधा हो जाता है। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त और सुखी एवं चिरंजीवी होते हैं। मैं अन्न की कामना से आपकी उपासना कर रहा हूं, आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूं जो वज्र बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि उन भूत माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर के सामने प्रकट होकर कहने लगे, युधिष्ठिर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो यह मैं तुम्हें तांबे का बर्तन देता हूं, तुम्हारे रसोई घर में जो फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी पुरुषती रहेगी। और आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतरित हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से छूट जाते हैं। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम विजय और धन की प्राप्ति हुई, सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का पाठ सेठ जी करते थे, किसी कार्य के लिए उन्होंने किया था फिर छोड़ दिया। उनकी बात पूरी हो गई, छोड़ दिया। सेठ जी ने निष्काम भाव की बड़ी महिमा लिखी है और वे बड़े निष्काम भाव से ही स्तोत्र आदि का पाठ करते थे, पर इस स्तोत्र का पाठ जिस कामना के लिए किया था वो कामना निष्काम भाव से बहुत ऊंची थी, ऐसा महाराज श्री ने कहा था। अस्तु, वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य से वर प्राप्त कर लिया। तदनंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और सब भाइयों को अपने छाती से लगाया और उसके बाद वो पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हो गई, थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र में, पात्र के प्रभाव से बढ़ जाया करता था, अक्षय हो जाता था। पात्र दिखने में बड़ा छोटा लेकिन उससे कितने ही आदमियों को तृप्ति हो जाए, महाराज युधिष्ठिर को इससे बड़ा संतोष हुआ, उन्होंने ब्राह्मणों को फिर खूब भोजन कराया। ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात भाइयों को खिलाते, तब बचे हुए अन्न को अमृत के समान समझकर स्वयं इसका भक्षण करते और युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती। तब उस पात्र का अन्न समाप्त होता था। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर खूब यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब हम तुमको कुछ हस्तिनापुर की कथा सुनाते हैं। जब पांडव वन में चले गए, तब प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उस विदुर से कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान बड़ी शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म को जानने वाले हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे दोनों का हित हो जाए। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे, क्योंकि प्रजा में हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों को कोई आगे हानि न पहुंचाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, क्योंकि भीमसेन ने तो ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर ली है जिससे मेरा हृदय कांपता है। विदुर जी ने कहा, महाराज, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से होती है। राज्य इसकी जड़ है। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्रों की रक्षा करो। हे महाराज, आपके अंदर मोह की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसमें धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंध युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराकर उनका सर्वस्व छीन लेना, इससे बड़ा और क्या अधर्म होगा। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकता है। तो विदुर, वो उपाय बताओ ना, तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। विदुर जी ने कहा कि सुनो, उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है वह सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का ये परम धर्म है कि वह अपने हक में संतुष्ट रहे, दूसरे का हक न ले। जो उपाय मैंने बताया है उससे आपका लांछन छूट जाएगा, भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। ये काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया तो शीघ्र से शीघ्र ये काम कर लेना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुलकलंक और दुरात्मा को कैद करके भी युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष है ही नहीं, इसलिए वे ही धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सकें तो ये पृथ्वी सभी राजाओं के लिए शांति देने वाली होगी। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करे। आप युधिष्ठिर को सांत्वना दें, आप अपने हाथ से युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दें। और तो क्या कहूं, बस इतना दृश्य सब लोग देख लेंगे, सबके हृदय के घाव पूरे हो जाएंगे। विदुर, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो एक ही पक्ष की बात बोलते हो, मैं तो दोनों के मेल मिलाप की बात बोलता था, तुम केवल पांडवों का ही चाहते हो, मेरे पुत्रों का ही चाहते ही नहीं। मेरा प्रिय दुर्योधन क्या राज्य से विमुख रहेगा, तुम्हारी बातें मेरे मन में नहीं बैठती, क्योंकि तुम पांडवों की पक्ष की बात करते हो और उल्टा मुझे उलाना देते हो कि आप दुर्योधन का पक्ष लेते हो। तुम तो दोनों में से किसी का पक्ष मत ले हो, तुम युधिष्ठिर का पक्ष लेकर के उनके मेरे ही समान पक्षपाती हो रहे हो। तुम ही बताओ विदुर, मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूं, उसको कैद कर सकता हूं, युधिष्ठिर का राज तिलक कर सकता हूं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है। मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूं और तुम मेरे पुत्रों का अहित ही अहित देखते हो, उनकी जड़ें काटते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की दशा देखकर विदुर ने कहा, महाराज अब कौरव कुल का नाश अवश्यम भावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा का शुभारंभ कर दिया। यों तो विदुर जी के चित्त में सदा ही पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उनको बहुत बुरा धक्का लगा और वे पांडवों के पास मिलने का एक अच्छा अवसर प्राप्त कर लिए। रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा कर दी। शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में वहां पहुंचा दिया जहां पांडव थे। उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। सब बड़े बैठे हुए ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने पहचान लिया कि एक रथ आ रहा है और उस रथ में हमारे ही चाचा विदुर जी आ रहे हैं, तो वे अपने आसन से खड़े होकर कहने लगे, भीमसेन अब विदुर जी क्यों आ रहे हैं, तनिक ध्यान से देखो ना, विदुर जी आकर के हम लोगों से क्या कहेंगे, अब तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्या फिर कोई दोबारा षड्यंत्र रचा गया है जिसकी सूचना देने आए हैं। भीमसेन ने कहा, भाई पता नहीं है, चलो अपन आगे चलते हैं, जो भी होगा वो बताएंगे। पांडवों ने अगवानी की, स्वागत किया, विदुर जी बड़े प्रसन्न होकर सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार की सारी बातें बताई। कुशल प्रश्न समाप्त होने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूं, तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। जो मनुष्य शत्रुओं के दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वी का राजा होता है।
बात बढ़िया।
जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति आती नहीं, और यदि आ भी जाए तो सब मिलकर उसको सहन कर लेते हैं और उस विपत्ति का प्रतिकार भी कर लेते हैं। इसलिए भाइयों को कभी अलग नहीं करना, ये मेरी दूसरी शिक्षा है। भाइयों के साथ सच्चे मन से दिल की खोल करके बात करना और महत्वपूर्ण बात करना, ऐसा व्यवहार करना कि हमारी किसी क्रिया पर भाइयों को कभी कुछ शंका ही न हो। जब कभी भी भोजन करो, अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करो। अपने आराम के पहले भाइयों के आराम की व्यवस्था करो। जो ऐसा करता है उसी का भला होता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, मैं बड़ी सावधानी से आपके उपदेश एवं आज्ञा के अनुसार काम करूंगा और आप लोगों की व्यवस्था अवस्था और समय के उपयुक्त जो आप ठीक समझते हो हमें बार बार बतलाते रहना, हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मेजय इधर जब विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे, ओहो, मैंने अच्छा नहीं किया, अब तो पांडवों को और ज्यादा सह मिल गई, उनकी अब बढ़ोतरी ज्यादा होगी, पांडवों की बन गई। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, भरी सभा में आए, सब राजाओं के सामने मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय मेरा प्यारा भाई विदुर, मेरा परम हितेशी और साक्षात धर्म की मूर्ति है, उसके बिना मेरा कलेजा फटरा जा रहा है, मैंने उसको क्रोधवश निरपराध भाई को निकाल दिया, तुम जल्दी जाओ विदुर को प्रसन्न करके यहां ले आओ, विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता हूं, संजय तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर संजय काम्यक वन में पहुंचे। संजय ने देखा महाराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाई और विदुर के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हैं और उनके बीच में बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं। संजय ने जाकर सबको प्रणाम किया, पांडवों ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपको याद कर रहे हैं, आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने पांडवों की ओर देखा, विदुर ने संजय की ओर देखा। विदुर जी थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए, फिर उन्होंने पांडवों से अनुमति मांगी और कहा, युधिष्ठिर, आप लोगों की अनुमति हो तो मैं हस्तिनापुर जाऊं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, विदुर जी, महाराज धृतराष्ट्र के प्राण की रक्षा के लिए अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है, आप अवश्य उनके पास जाइए। विदुर जी वहां से रवाना हो गए, हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, विदुर जी ने, मेरे प्यारे भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुम सकुशल लौट आए, तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी ना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो नींद नहीं आई, मैंने देखा तुमको भी मेरे बिना नींद नहीं आती होगी, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे आराम से रह सकता था, देखो मैं श्रीहीन हो गया। ओ विदुर, मैंने तुमको कुछ अनुचित कह दिया है तो उसके लिए क्षमा कर दो। विदुर ने कहा, राजन आप मेरे से बड़े हैं, पूजनीय हैं, मैं तो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता हूं, ऐसी बातों पर क्षमा करने की क्या बात है, आपने बुलाया मैं आपके दर्शन के लिए आ गया, मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं, फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आती है, मैं न्याय का पक्ष लेता हूं, मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति द्वेष भाव नहीं है, कल्याण का भाव है, प्रेम का भाव है, उसमें जो बात है वो बात कहनी पड़ती है। दोनों एक प्रकार से मिलकर प्रसन्न और सुखपूर्वक रहने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि यहां से निकाला हुआ विदुर पांडवों के पास चला गया, बड़े खुश हो गए, हमारा एक कांटा यहां से निकल गया। परंतु जब दोबारा समाचार मिला कि विदुर जी तो पांडवों के पास से वापिस हस्तिनापुर लौट आए, तब उसको बड़ा दुख हुआ। अपने मामा शकुनी को बुलाया, कर्ण को बुलाया, दुशासन को बुलाया और कहा कि देखो हमारे पिताजी कैसे हैं, पांडवों के हितेशी विदुर को यहां वापिस वन से बुला लिए हैं, ये पिताजी की ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों पैदा होती हैं, कहीं ये विदुर इनको कह सुनकर के फिर से पांडवों को यहां न बुला ले, इससे पहले ही अपने को कोई ऐसी युक्ति लगानी चाहिए जिससे हमारा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, मित्र हम सब कवच और शस्त्रास्त्र धारण करके यथ यात्रा पर सवार हों और वनवासी पांडवों को मार दें, शस्त्र चलाएं, इस प्रकार पांडव जब मर जाएंगे तो तुम्हारे लिए सदा का कष्ट ही दूर हो जाएगा और लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पांडव लड़ने भिड़ने के इस समय उत्सुक नहीं है, शोकग्रस्त है, मन से टूटे हुए हारे हुए हैं, अभी उनके अंदर जोश नहीं है, अतएव अकस्मात जाकर उन पर आक्रमण कर दो। सभी ने कहा बहुत अच्छी बात है, कर्ण की बात तो बहुत समय पर आई है। वे सब क्रोध के अधीन होकर सवार हो गए, रथ पर बैठ गए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि वेदव्यास बड़े ही शुद्ध अंतकरण के महापुरुष थे, उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चला और उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया और धृतराष्ट्र के पास जाकर कहने लगे, धृतराष्ट्र आज मैं तुम्हारे बिना बुलाए आया हूं, क्योंकि तुम लोगों के हित की बात मुझे आज खुलकर के करनी है। दुर्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और वन में भेज दिया, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। यह निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों का स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करके बाणों की बौछार करके तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर देंगे। भला ये कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मारने के लिए रवाना होना चाहता है। मैं कह देता हूं कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो पांडवों के पक्ष में जितनी गुप्त शक्तियां हैं वो एक साथ खड़ी हो जाएंगी और उससे तुम्हारे पुत्रों का सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न नहीं करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे और उनकी सेवा करे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर हो जाए और युधिष्ठिर आदि के प्रेम भाव से उसका भी अंतःकरण पवित्र हो जाए, परंतु ये बात बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है धृतराष्ट्र, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदला जाना सरल नहीं होता है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और लंबे समय तक जीना चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र पांडवों के साथ मेल मिलाप का उपाय ढूंढे। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो कुछ आप कह रहे हैं यही तो मैं करता हूं, यही मैं कहता हूं, यही मैंने विदुर को कहा है। ये बात सभी लोग जानते हैं, आप सब राजाओं से पूछ सकते हैं। मैं इन दोनों का बहुत प्रेम ही चाहता हूं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी शिक्षा दो ताकि वो निर्मल और शुद्ध और पवित्र हो जाए। व्यास जी ने कहा कि देखो राजन, मैं तो अब जा रहा हूं, थोड़ी देर में महर्षि मैत्रेय यहां आने वाले हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं, वे ही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश करेंगे। इस बात की सूचना दे देता हूं कि जो कुछ कहें बिना सोच विचार के कर लेना। यदि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन होगा तो मैत्रेय क्रोधवश शाप भी दे सकते हैं। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित उनकी अनेक प्रकार की सेवा में लग गए। उन पुत्रों ने देखा कि कहीं शाप न दे दे, खूब खुश किया। विश्राम के साथ धृतराष्ट्र ने बड़े विनय के साथ पूछा, हे भगवान, आप कुरु जंगल देश से यहां तक आराम से तो आए हो ना, मेरे पांचों पांडव कुशल से तो है ना, वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि कौरवों और पांडवों में सदा के लिए आपस में कैसे प्रेम हो जाए, और कभी प्रेम हो जाएगा ना। कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे मेरे पुत्र दुर्योधन में और पांडव पुत्र युधिष्ठिर में खूब प्रेम का व्यवहार हो जाए। मैत्रेय ने कहा, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरु जंगल देश में गया और वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों का झुंड आ रहा है। बहुत से ऋषि मुनि तो उनके साथ ही रहते हैं। धृतराष्ट्र, जब मैंने यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावनी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूं। राजन, ये किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे बेटा एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र एवं रोकने सजा करने में समर्थ हो। तुम दोनों पक्षों से विचार करो कि अन्याय कहां से पैदा हो रहा है। जहां से अन्याय पैदा होता है उस अन्याय को तुम क्यों नहीं रोकते हो, उस अन्याय की तुम क्यों उपेक्षा कर रहे हो। तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्यायकारी हुआ उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बहुत हेठी हुई है। सब लोग तुमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सब लोगों ने कहा है कि धृतराष्ट्र की राजसभा में उनकी कुलवधु का इतना घोर अपमान जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ और फिर कभी शायद हो, वो धृतराष्ट्र की सभा में हुआ। ऐसे कर रहा आपसे छी छी करते हैं। अब भी आप समझ जाओ। उसके बाद मैत्रेय जी ने दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित और प्रिय इसी में ही है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं, नररत्न हैं और धर्मात्मा हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, स्वाभिमानी, राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं, उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है। क्या तुमने नहीं सुना, हिडंब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार डाला है। जिस समय रात में वे यहां से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बातों ही बातों में मसल दिया। तुम तो जानते हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को कैसे सबके बीच में नष्ट कर दिया था। और सबसे बड़ा बल उनके पास कृष्ण का है। कृष्ण हृदय से पांडवों के पक्षपाती हैं। राजाओं में द्रुपद उनके ससुर हैं और द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के युद्ध में टक्कर लेने वाला इस धरती पर अभी तक कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। बेटा मेरी बात मान लो, क्रोध के वशीभूत होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन बेपरवाही की मुस्कुराहट करता हुआ पैर से जमीन कुरीदने लगा और अपनी सूंड के समान जांग पर हाथ से ताल ठोकते ठोकते लड़ेंगे, चाहे जो कुछ हो जाओ लड़ेंगे। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने शाप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा है। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया, मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता है, ले तुझे इस अभिमान का अभी फल चखाता हूं। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों का घोर युद्ध होगा और उसमें जिस जांग को तुमने हमारे सामने ठोक ठोक करके बताया, भीमसेन की गदा की चोट से यही जांग तेरी तोड़ी जाएगी। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों में गिरकर रोते बीते विनय करने लगा, भगवान ऐसा मत बोलिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा शाप मत दीजिए, कोई दूसरा कोई शाप दे दीजिए, हे प्रभु ऐसा मत बोलिए, मैत्रेय जी ने कहा, राजन यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल मिलाप कर लेगा तब तो मेरा शाप उतर जाएगा, नहीं तो ये शाप तुम्हारे लिए चढ़ता ही रहेगा। महर्षि वे मैत्रेय जी चले गए। दुर्योधन भी किरमीर वध सुनकर के मन में टूट गए, उदास हो गए कि यदि किरमीर को मार दिया है तो निश्चित भीमसेन बहुत बलशाली है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मे जय मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर ये किरमीर राक्षस की भेंट भीमसेन से कहां हुई और ये किरमीर का वध भीमसेन ने कैसे किया, हमको पता नहीं चला, तुम बताओ। विदुर जी ने कहा, महाराज पांडवों के एक एक काम अलौकिक होते हैं, कितनी कितनी बात आप पूछेंगे, मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता रहता है और मैं तो बार बार पांडवों के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं सुन सुनकर प्रसन्न होता हूं। तो सुनो महाराज, जिस समय पांडव जुए में हार कर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए उस समय लगातार 3 दिन तक चलते रहे, जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे उसी रात के समय उसी मार्ग को रोककर किरमी राक्षस खड़ा हो गया, वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी, दाढ़े भयंकर, आंखें लाल लाल, सिर के बाल एकदम खड़े हुए मानो कोई आग की लपटे उछल रही हूं। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता, कभी बादलों की तरह गरजता, कभी उसकी गर्जना से वन पशु भयभीत होकर खलबला उड़ते, आंधी चलने लगती, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन से ही बेहोश हो गई। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ किया और वो राक्षसी माया नष्ट हो गई। उसी समय किरमीर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमीर ने कहा, मैं बकासुर का भाई हूं, तुमने बकासुर को मारा है, मैं हिडंब का मित्र हूं और तुम्हारे में जो भीमसेन है मुझे उसके साथ युद्ध करना है, क्योंकि भीमसेन ने बकासुर को और हिडंब को मारा है। बड़ा अच्छा हुआ, बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कहां मिलेगा, महलों में तो मैं जा नहीं सका, बड़ा अच्छा हुआ तुम मुझे वन में मिल गए, और अब मैं कौन भीमसेन है उसे अभी नष्ट कर देना चाहता हूं। भीमसेन उसी समय पांचों में से आगे बढ़कर आए, आओ ये भीमसेन तुमसे युद्ध करने के लिए उतावला है। उसी समय एक पेड़ उखाड़ा, उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, पर राक्षस के कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। उसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, आसपास के बहुत से वृक्ष उखड़ के नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपट कर राक्षस को अपनी बाहों में बांध लिया, परंतु वो जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को पकड़ लिया। तदनंतर भीमसेन घूम करके उसको उठा करके ऐसा जमीन पर गिराया कि उसको गिराते ही अपने दोनों घुटने उसके ऊपर रख दिए, उसकी छाती बैठ गई, गला घोंट दिया और उसके बाद मुक्कों और लातों से इतना मारा उसकी आंखें निकल गई और किरमीर राक्षस का वहीं प्राणांत हो गया। पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, सब ने पांडवों की प्रशंसा की और फिर निधड़क होकर पांडव काम्यक वन में प्रवेश कर गए। इस प्रकार विदुर जी से किरमीर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र नीचा मुख कर लिए, उदास हो गए, लंबी लंबी सांसें लेने लगे, अपने हथेली पर अपना उदास मुख रख लिया और चुपचाप बैठे रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय जब भोज वृष्णि अंधक आदि वंशों के यादव पंचाल के धृष्टद्युम्न चेरी देश के धृष्टकेतु और केकय देश के सगे संबंधियों को ये संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवों पर बहुत चिढ़ करके क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए पांडवों के पास गए। सभी क्षत्रिय भगवान कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, वो प्रणाम करते थे युधिष्ठिर के चरण, भीमसेन के चरण छूते थे भगवान। बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं अब यह बात निश्चित हो गई है कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन कर्ण शकुनी और दुशासन का खून पर खून की प्यासी है और इनका खून ये पृथ्वी पिएगी। ये सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग कर रहा हो उसे मार डालना चाहिए। हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें और धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी हैं, सारा जगत आपसे ही प्रकट होता है, सारा जगत आप में ही समाया हुआ है, आप तपस्याओं की अंतिम गति हैं, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही ने इंद्र को इंद्रत्व दिया है, आप ही ने भौमासुर को मारकर मणि के दोनों कुंडल इंद्र को दिए थे, आपने जगत के उद्धार के लिए मनुष्य रूप अवतार लिया है, ये जो ब्रह्मा सोम सूर्य धर्म धाता यमराज अग्नि वायु जो कुछ है वो सब आप ही तो हैं, आपने ही अदिति के यहां वामन रूप से अवतार लिया था, आपने ही हजारों अवतार लेकर धर्म विरोधी असुरों का संहार किया था, आपने ऐश्वर्यमयी द्वारिका नगरी को अपना कर लीला का विस्तार किया था, आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। फिर मधुसूदन, आप में जब कभी ऐसी क्रोध की स्थिति देखी जाएगी, जबकि आप में क्रोध नहीं है, लेकिन ये दुनिया क्या समझेगी, ये संसार तो यही कहेगी कृष्ण भी क्रोध करते हैं, तब दुनिया और ज्यादा आपके इन क्रोध की लीलाओं को देखकर और ज्यादा क्रुद्ध हो जाएगी। आपका क्रोध तो प्रलय के समय होता है, आप ही तो शंकर हैं, आपने ही तो ब्रह्मा होकर संसार को बनाया है और आपने बाल लीला के समय बलराम के साथ मिलकर जो अलौकिक कार्य किए हैं वैसा दूसरा कौन कर सकता है और कोई आगे नहीं कर सकेगा, इसलिए आप क्रोध की बात छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण की आत्मा अर्जुन जब इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, अर्जुन तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वो तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वो मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी है। तुम नर हो, मैं नारायण हूं। हम लोगों ने निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो, मैं तुमसे अभिन्न हूं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों में दिखने के स्वरूप अलग अलग हैं, वास्तव में एक हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके पास आई और अपने आंसुओं से अपने भावों को प्रकट करने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन मैंने असित और देवल मुनि से सुना है कि सृष्टि का निर्माण आप अकेले ही बिना किसी की सहायता से करते हैं। मैंने परशुराम जी से ये बात सुनी है कि आप अपराजित विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही ऋत्विक हैं और आप ही यजनीय हैं। सारे ऋषि आपको क्षमा स्वरूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं, इनसे संपन्न होने वाले यज्ञ भी आप हैं, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। नारद जी ने कहा है कि सब प्रकार के कल्याण के संपादक, सृष्टि के कर्ता और महेश्वर भी आप हैं। आप युद्ध में पीठ न दिखाने वाले राजर्षियों की धर्म गति हैं, इसलिए मैं आपके सामने अपना दुख निवेदन करती हूं। हे कृष्ण, मैं पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूं। मुझ जैसी गौरवशालिनी स्त्री को कौरवों की भरी सभा में घसीटा जाए, कितने दुख की बात है। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया और राजाओं से ठसाठस भरी सभा में मुझ एक वस्त्रा रजस्वला स्त्री को चोटी पकड़कर घसीट करके मंगवाया गया। मधुसूदन, मैं जानती हूं कि गांडीव धनवा अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता, गांडीव धनुष को कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर उस समय भीमसेन और अर्जुन ने मेरी रक्षा नहीं की। मैं उस समय कुछ नहीं बोली, आज आप मेरे अपने मुझे मिले हो। अपनों के सामने मनुष्य का हृदय एकदम खुल जाता है। मैं भीमसेन और अर्जुन के बल पौरुष को धिक्कारती हूं, इनके जीते जी। दुर्योधन क्षण भर के लिए भी जीवित है, वही दुर्योधन जिसने अजात शत्रु सरल चित्त पांडवों को इनकी माता के साथ हस्तिनापुर से निकाल दिया। इसी ने भीमसेन को विष देकर मार डालने की चेष्टा की। ये तो भीमसेन की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गए, ये इनके प्रारब्ध की बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाण कोटि वट के नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें रस्सी में बांधकर गंगा में डाल दिया। अवश्य रस्सी तोड़कर तैरकर निकल आए, सांपों से डसवाने में उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सास अपने पांचों पुत्रों के साथ वारणावत नगर में सो रही थी, उसने आग लगाकर इन्हें जला डालने की चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला और कोई मनुष्य कर सकता है? और हे कृष्ण, मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर होकर देखते रहे। इनको उस समय अपना तेज अपना बल याद नहीं आया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये बकासुर से कम असुर है? हिडम्बासुर से कम असुर है? उन असुरों को इन्होंने मारते देरी नहीं लगाई, क्या कारण था कि इन्होंने दुर्योधन को बचा दिया, दुशासन को बचा लिया? धिक्कार है इनको। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बंद नहीं हो रही थी। वो अपना मुंह ढक ढक कर जोर जोर से रोने लगी, उसकी लंबी लंबी सांसें चलने लगी। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, इनकी बात जाने दो, तुम कहां चले गए? चार कारणों से तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्नि कुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूं, तीसरा तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूं, और चौथा तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, तुम कहां चले गए? भगवान कृष्ण गंभीर हो गए। बहुत देर के बाद भगवान ने उन सब के सामने द्रौपदी को संबोधित करते हुए कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। तुम पतियों के जीवित रहते हुए रो रही हो और वे पतियों के मरने के बाद रोएंगी। अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर उनके पति जमीन पर सोए रहेंगे, और गीदड़ चील तरह तरह के जानवर उनके मांस को लोच लोच के खाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। द्रौपदी, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय में दाह पैदा कर रहे हैं, अब तुम शोक मत करो, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनकर रहोगी, चाहे आकाश फट जाए, चाहे हिमालय के टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे पृथ्वी चूर चूर हो जाए, चाहे समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने कृष्ण की बात सुनकर टेढ़ी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय तुम रो मत, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वो वैसा ही होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी, पितामह भीष्म को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। मैं द्रोण को मारूंगा, शिखंडी पितामह भीष्म को मारेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मारेंगे और अर्जुन कर्ण को मारेंगे। जब हमें बलराम जी और श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है, तब इंद्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान कृष्ण की ओर घूम गई। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, राजन, यदि उस समय मैं द्वारिका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते तब मैं स्वयं वहां आता, और बहुत से दोष दिखाकर मैं आपको जुए के इस अनर्थ के कीचड़ में नहीं जाने देता, और मैं हर प्रकार से रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाहली को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, राजन क्या तुम अपने बच्चों को जुए के कुएं में फेंकना चाहते हो? तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। और मैं वहां खड़ा हो जाता, किसी प्रकार ये द्यूत क्रीड़ा नहीं होने देता। जुए के दोष से राजा नल की कितनी विपत्ति आई, राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन सबको सुनाता। धर्मराज, उसी जुए के कारण आप राज्यच्युत हुए। जुए के बिना धन संपत्ति का, जुए से बिना समय के धन संपत्ति का नाश हुआ। बार बार खेलने की ऐसी सनक सवार होती है कि उसकी लड़ी टूटती नहीं है। स्त्रियों से हेल मेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों प्रत्यक्ष दुख के कारण हैं। इनसे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। यूं तो चारों ही बातें बुरी हैं, परंतु जुआ सबसे बढ़कर बुरा है। जुए से एक दिन में सारी संपत्ति का नाश हो जाता है, मनुष्य बुरी आदत में फंसता है, धर्म अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है, और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौज होती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता, यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता, और यदि उनके जुआरी, सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं अपनी शक्ति से उनको मार डालता। उस समय मेरे द्वारिका में न रहने से जो हुआ वह आज सामने है। आप विपत्ति में पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे, तब आप कहां थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज उस समय में शाल्वका और उसके नगराकार विमान सौभ का नाश करने के लिए द्वारिका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके रासुई यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र के द्वारा मार डाला था, उस समय तो मैं यहां था। और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुनते ही साल्व ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। वह सप्त धातु निर्मित सौभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारिका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग, बगीचे, महल सब नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा, यादवाद हम मूर्ख कृष्ण कहां है? मैं उस कृष्ण का घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह जहां होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। ऐसे गर्जना करने लगा और कहने लगा, विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए मैं आज उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज, साल्व ने बहुत कुछ बकझक करके द्वारिका में उधम मचाया, और इधर द्वारिकावासी मेरी बाट जोने लगे, और वो भी मेरी बाट जो रहा था। मैं आपके यज्ञ से चलकर द्वारिका पहुंचा, मैंने वहां की दुर्दशा देखी, मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि अब इसका अंत ही कर देना उचित है। मैंने जब द्वारिका से बाहर निकलकर उसकी खोज की तब वो वहां से भाग गया और समुद्र के बीच में एक भयानक द्वीप में अपने विमान सहित वहां जाकर छिप कर रहने लगा। मैंने पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए साल्व को ललकारा, तब भी वो बाहर नहीं आया। फिर मैंने उसको ललकारा कि साल्व तेरी बड़ी बड़ी बातें कहां गई? तब वो बाहर आया और बाहर आकर के हमसे युद्ध करने लगा। हमने साल्व समेत उनके साथ जितने दानव थे सबको मैंने धराशायी कर दिया। यही कारण है कि उस समय द्वारिकापुरी में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारिका पहुंचा तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट द्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है, आप लोगों की पराजय हो गई है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहां आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर साल्ववध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में भगवान द्वारिका जाने की अनुमति मांगने लगे। अनुमति मिलने पर भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा, कृष्ण ने भीमसेन को प्रणाम किया, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गले मिले, दोनों के आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, धौम्य पुरोहित ने उनका बड़ा सम्मान किया और द्रौपदी ने अपने आंसुओं से कृष्ण को भिगो दिया। श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज देकर द्रौपदी को खूब प्रेम से समझाकर उनके अंदर विपत्ति को सहने की क्षमता देकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन करेणुमती, जिसका विवाह नकुल के साथ हुआ था, उसको लेकर अपनी नगरी शुक्तिमती की यात्रा की। देखो, शिशुपाल तो भगवान के साथ यूं रखता था और शिशुपाल का जो बेटा था धृष्टकेतु, उसकी बहन अर्थात शिशुपाल की पुत्री नकुल की स्त्री थी। सभी राजा महाराजा अपने अपने देश लौट आए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। जन्मेजय, यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। कितना प्रेम पांडवों के प्रति प्रजा का, प्रजा के प्रति पांडवों का, पांडवों का कृष्ण में, कृष्ण का पांडवों में, द्रौपदी का कृष्ण में, कृष्ण का द्रौपदी में, ये सब प्रेम का वातावरण देखने लायक था। सब लोग अपने अपने स्थान के लिए लौट गए और उनसे आगे जाने के लिए बहुत से लोगों ने अनुमति मांगी और वहां से प्रस्थान किए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री